ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों की जो पालना की है उस पालना का रिटर्न देने का समय आ गया है। कितने सालों से बाप दादा हम सब बच्चों की सेवा में रहे, कितने सुंदर महावाक्यों से हमारा जीवन सींचते रहे, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, संस्कारों में दिव्यता लाने का प्रयास बाबा करते रहे और उसके लिए ऐसी गुह्य ते गुह्य बातें सुनाई कि अगर उन गुह्य बातों को सचमुच हम जीवन के अंदर प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आए तो हम सभी के सामने कभी कोई विघ्न, कोई परिस्थिति, कोई बात आ नहीं सकती है। परंतु जो बाबा की चाहना है कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान हो जाए, वो भगवान का स्वप्न या संकल्प हम पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अभी तक पुरुषार्थी कह करके हम अपने आप को कई बातों से सुरक्षित कर लेते हैं या बचाते रहते हैं, परंतु शायद अब बाबा ये शब्द भी सुनना नहीं चाहते हैं कि पुरुषार्थी है। बहुत समय बाबा ने हमें दे दिया पुरुषार्थ करने के लिए भी, लेकिन अब बाबा सेकंड में, जैसे हमेशा बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति की स्थिति, तो सेकंड में वो जीवन मुक्त स्थिति देखना चाहते हैं ताकि उस जीवन मुक्त स्थिति से हम प्रैक्टिकली अनेकों के लिए आदर्श बन जाए। ब्रह्मा बाबा हम सभी बच्चों के लिए ऐसे आदर्श रूप में रहे और इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को भी अपने समान देखना चाहते हैं। यज्ञ की जो स्थिति है अभी समय अनुसार, हम कहेंगे कि यज्ञ की अब तीसरी अवस्था चल रही है। प्रथम अवस्था जब यज्ञ की शुरुआत हुई 1936 में, जब यज्ञ की शुरुआत हुई और जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने ये बात बताई साक्षात्कार के माध्यम से कि तुम ही श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा हो, वो तुम्हारा ही स्वरूप है और ब्रह्मा बाबा ने उस महावाक्य को बिना किसी संशय के, बिना किसी सवाल के उस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके ब्रह्मा बाबा ने अपने श्री कृष्ण के संस्कारों को इतना सुंदर तरीके से इमर्ज करना शुरू कर दिया। या यूं कहे कि श्री कृष्ण के संस्कारों का जन्म हुआ इतना बाबा ने उस संस्कार को इमर्ज किया और प्रैक्टिकल स्वरूप बन गए कि जो भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उन्हें भी मिचनु कृष्ण दिखाई देता था। यज्ञ इतिहास में दादियों के अनुभव में हम सभी सुनते हैं ये बात कि उस समय जो भी दादियां आई यज्ञ के अंदर हर एक को ब्रह्मा बाबा के साथ छोटा बच्चा श्री कृष्ण स्वरूप साक्षात्कार होता था। इतना निश्चय बुद्धि बन करके बाबा ने उन संस्कारों को इतना तीव्र गति से इमर्ज कर लिया कि वह स्वरूप का साक्षात्कार हर एक को होने लगा। और उसके बाद जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई तो यज्ञ के अंदर भी वो 14 साल ऐसे बीते दादियों के कि जैसे हर रीति से श्री कृष्ण के साथ ही वो थे ऐसा महसूस करने लगे। महसूस तो नहीं सिर्फ लेकिन ऐसी बाल लीलाओं को अनुभव करने लगे। इतना सुंदर बाबा के साथ का वो 14 साल कहां बीत गया पता ही नहीं चला 4 दीवारियों के अंदर, क्योंकि पार्टीशन का समय शुरू हो गया, बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो इसीलिए वही 4 दीवारियों के अंदर बाबा के साथ भले वो छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे, 14 साल 15 साल के बच्चों के रूप में थे और बाबा इतना बुजुर्ग 60 साल के, लेकिन फिर भी बाबा ने उसे कृष्ण के संस्कारों को इतना जागृत कर दिया, इमर्श कर दिया। और इस तरह से 1950 तक वो अनुभव में सब जीते रहे। और उसके बाद जैसे ही 1950 से आबू आए तो आबू आने के बाद बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, क्योंकि यज्ञ की रचना करनी थी, बाबा को स्थापना करनी थी, इसीलिए वो पार्ट भी जरूरी था। लेकिन आबू आने के बाद वो पार्ट बाबा ने धीरे 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 करके साक्षात्कार भी एक माया है ऐसे कहते हुए वो पार्ट को बंद कर दिया। और यहां आने के बाद जैसे वो श्री कृष्ण बाल स्वरूप से युवा स्वरूप में आ गया था, और युवा स्वरूप में जब आ गया तो शास्त्रों में जैसे दिखाया है कि युवा अवस्था में तो गीता ज्ञान देना चालू किया, तो इसी तरह 1950 से लेकर के साकार बाबा ने वो श्री कृष्ण के संस्कार को जागृत किए और शिव बाबा ने उनके माध्यम से सारथी बन करके गीता ज्ञान देना प्रारंभ किया और इतना सुंदर तरीके से ठोस ज्ञान दिया। 1969 तक तो बेसिक ज्ञान को अच्छी तरह से स्पष्ट किया, जबकि दादियां कहती थी कि कराची में इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था, लेकिन आबू आने के बाद जब गीता ज्ञान प्रारंभ हुआ तब ज्ञान स्पष्ट हो गया। लेकिन 1969 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया उसके बाद गुह्य रहस्य भरा ज्ञान आरंभ हुआ, या जिसको कहा जाए गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप। जैसे गीता के अंदर भी आरंभ में आत्मा परमात्मा योग का ज्ञान स्पष्ट करते रहे 10वें अध्याय तक तो, लेकिन 10वें अध्याय के बाद जब विराट रूप दिखाया और उसके बाद का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के बारे में। या जिसको कहे गुह्य से गुह्य ज्ञान को स्पष्ट करना आरंभ किया, कि जिसके अंदर खास करके 16, 17, 18 अध्याय जो है, हर बात की तीन अवस्था गीता ज्ञान के अंदर स्पष्ट की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। चाहे कर्म हो, बुद्धि हो, दान हो, धारणा हो, हर बात के सात्विक, राजसिक, तामसिक स्थिति कौन सी होती है? ये जैसे आईना दिया। 69 के बाद बाबा का जो मुरलियों का स्वरूप है, अव्यक्त मुरलियों को हम सभी जानते हैं कि वो स्वरूप कौन सा था, कि सात्विक स्थिति क्या होती है हर बात की धारणा, राजसिक स्थिति क्या होती है। बाबा भी मुरलियों में हमेशा नंबर 1 आत्माएं ये है, नंबर 2 आत्माएं ये है, नंबर 3 आत्माएं ये है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों स्थितियों को बाबा स्पष्ट करते रहे और फिर बाबा कहते रहे, अब अपने आप को देखो कि आप कहाँ हो। कई बार बाबा की जब लकी सितारों की मुरली चलती है, एक होते हैं उम्मीदवार सितारे, एक होते हैं सफलता के सितारे, एक होते हैं उम्मीदवार। तो उम्मीदवार, सफलता और जो बाबा कहते हैं कि कहाँ हो, लकी सितारे कहाँ हो। तो तीनों स्टेज हर अव्यक्त मुरली में आप देखेंगे, जो सात्विक सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो होती है वो क्या होती है, राजसिक स्थिति जो होती है वो कहाँ तक होती है, और तामसिक स्थिति जो होती है ब्राह्मण जीवन में भी वो क्या होती है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। और गीता के अंदर भी यही बातें स्पष्ट है। तो ठोस अव्यक्त मुरलियों में भी जैसे बाबा आईना देता रहा कि हर एक व्यक्ति ये महसूस करता था कि अभी तो शायद हम पहले स्टेज में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा, ये महसूस आती थी बाबा की मुरलियों से। और इस तरह से 18 अध्याय का ज्ञान 2012-13 तक बाबा ने पूरा किया। वो 2013 से बाबा ने पूछना चालू किया, अब एवर रेडी हो, एवर रेडी हो। बच्चों ने अक्सर यही समझा कि एवर रेडी माना बाबा घर जाने के लिए पूछ रहे थे कि भाई घर जाने के लिए तैयार हो, घर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन वास्तव में घर जाने का समय अभी भी नहीं आया है। तो फिर बाबा एवर रेडी किस बात के लिए पूछ रहे थे? एवर रेडी पूछने का भाव अब समझ में आ रहा है कि गीता के ज्ञान के बाद युद्ध आरंभ होना है, युद्ध शुरू होना है। तो अब युद्ध के लिए तैयार हो गए हो या नहीं हुए हैं? गीता ज्ञान दे दिया और इसलिए 2014 से अगर आप देखेंगे, बाबा ने फाइनल टिप्स फिर भी देना चालू कर दिया कि जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल कराई, साकारी, आकारी, निराकारी की ड्रिल कराई कि जब भी कोई परीक्षा या युद्ध आ जाए तो ऊपर उठ जाओ, अपने रथ को यानी अपनी स्थिति को ऊपर उठा लो ताकि युद्ध में आप घायल न हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, मन से, स्थिति से वतन में पहुंच जाओ। ये बाबा कहने का भाव था बाबा का, कि अभी ऊपर उठ जाओ हर बात से, तब युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि ऊपर से आप अच्छी तरह से परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, नीचे अगर रहेंगे तो कई चीजें आपको इफेक्ट करेगी, मनस्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने ड्रिल कराया फाइनल के, किस तरह से साइलेंस में चले जाओ, निराकारी स्थिति में चले जाओ, वतन में चले जाओ, ये फाइनल टिप्स देना चालू कर दिया बाबा ने। और 2014 के बाद अगर देखेंगे तो युद्ध आरंभ हो गया। अभी वो तीसरा विश्व युद्ध तो जब होना होगा तब होगा, कई लोग वही पूछते रहते हैं विनाश कब होने वाला, विनाश कब होने वाला। अरे विनाश के पहले जो युद्ध है उसमें तो विजयी बनो, विनाश जब भी होना होगा। कई लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं, ये साल में हो जाएगा, ये साल में हो जाएगा, ये। अरे उन बातों में नहीं जाओ, क्योंकि उन बातों में आप अपनी बुद्धि की एनर्जी को खर्च करेंगे तो जो प्रैक्टिकल पेपर आ रहे हैं उन पेपरों का सामना करके उनको पार करके विजयी कैसे बनेंगे। उन बातों में उलझो नहीं, विनाश जब भी होने वाला होगा होगा, लेकिन अब युद्ध आरंभ हो चुका है। कौन सा युद्ध? हर एक ब्राह्मण युद्ध के मैदान में आ गया, गीता ज्ञान समाप्त हो गया है, गीता ज्ञान समाप्त हो गया है। अब बाबा सिर्फ आथक दे रहे हैं ताकि जैसे बच्चे को मोटिवेट करना हो, उमंग उत्साह में लाना होता है तो क्या किया जाता है, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह कहते हैं ना, ताकि उसके अंदर उमंग उत्साह भरे युद्ध के लिए। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को वाह वाह करके वो उमंग उत्साह भर रहे हैं ताकि हम युद्ध में विजयी हो जाए। ये बाबा का भाव है। बाकी बाबा ने जो गहराई की बातें सुनानी थी वो सब सुना दिया। अब बाबा युद्ध के लिए बच्चे निराश न हो जाए, ना उम्मीद न हो जाए, निरुत्साहित न हो जाए, इसलिए बाबा अभी उत्साह के ही बोल बोल रहे हैं ताकि बच्चे में उमंग उत्साह का जोश भर जाए, है ना। और इसीलिए अब युद्ध आरंभ हो गया है। कौन सा युद्ध है? हर एक ब्राह्मण युद्ध में लड़ रहा है अभी। कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से युद्ध कर रहा है, कोई बीमारियों से युद्ध कर रहा है, कोई स्वभाव संस्कारों से युद्ध कर रहा है, कोई मान शान के पीछे युद्ध में लगा हुआ है, कोई पोस्ट पोजीशन के लिए युद्ध में लड़ रहा है। हर कोई युद्ध के मैदान में है और हर कोई लड़ रहा है। कई बार ये युद्ध करते करते, परिस्थितियों से युद्ध करते करते निरुत्साहित हो जाते हैं, कब तक लड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा वाह 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 के बोल भरते हुए उमंग उत्साह फिर दिला देता है। कई बार कई लोग कहते बाबा वाह 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 क्यों करता है? अरे जरूरी है ये भी, क्योंकि नहीं तो लड़ते लड़ते थक करके एकदम टूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वाह बच्चे अच्छी तरह से युद्ध कर रहे हो आप, कोई बात नहीं करो। ये बाबा उत्साह भर रहा है ताकि बाबा के ऐसे महावाक्य सुन करके भी, जैसे बच्चा भले गलती करता हो लेकिन बाप का काम है उसके अंदर उत्साह भरना, वाह बेटा वाह बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं और आगे अच्छा करो तुम, यही कहते हैं ना। तो यही उमंग उत्साह बाबा भी हमारे अंदर, क्योंकि युद्ध चालू हो गया है। अब जब युद्ध शुरू हो गया है और जितना ग्रॉस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर होंगे तो स्थिति तो ऊपर नीचे होनी ही है। इसलिए बच्चों की अवस्था की परीक्षाएं बहुत अभी हो रही है, क्योंकि युद्ध में घायल तो हो ही जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखा तो। तो युद्ध कहाँ कर रहे हैं हम? यही कुरुक्षेत्र के मैदान में है। कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र के अंदर ही परिस्थितियां भी आनी है, समस्याएं भी आनी है, प्रॉब्लम्स भी आने है, सब कुछ आना है। तो यही तो कर्म क्षेत्र है जहाँ हम युद्ध में खड़े हैं। अच्छा यहाँ ही पांडव भी है तो कौरव भी है। कौरव कौन है? हाँ भीष्म। कौरव का बड़ा कौन था? भीष्म। यानी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है पवित्रता की। कई बच्चे हैं जो भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया है, लेकिन लेकिन किस तरफ खड़े हैं, किसको साथ दे रहे हैं, सच्चे पांडवों के साथ कितना न्याय अन्याय हो रहा है, उसके लिए बोलने की हिम्मत कितनी है, है तो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के भी साथ किसके हैं? अपने आप को देखो कि मैं पांडवों के तरफ हूं या कौरवों के तरफ हूं। क्योंकि जब शास्त्रों में देखो कितनी सुंदर बातें आई है कि जब दुर्योधन अर्जुन दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए और उस वक्त भगवान ने पूछा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा नारायणी सेना चाहिए। तो नारायणी सेना थी किसकी? किसकी थी? भगवान की थी ना। तो हम सभी सेना किसकी है? है तो भगवान की। लेकिन किसके तरफ चले गए? किसके तरफ चले गए? भगवान के बदले कौरवों के तरफ हो गए। और कौरवों के तरफ जाने वाले कौन? नाम मान शान के साथ जो युद्ध कर रहा है। अभी भी ये इच्छाएं हैं अंदर में, नाम मान शान चाहिए। अभी भी अंदर में पोस्ट पोजीशन की इच्छाएं हैं, ये चाहिए चाहिए की चाहना है। ये कौरवों के तरफ ही हो गए, जबकि पांडवों के लिए तो कहा गया इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति हो गई, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई उनके अंदर। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, ये पांडव हो तो देखो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं पांडव हूँ या कौरव के तरफ हूँ। नारायणी सेना में ही है सभी, किसके तरफ है? द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी भी है, लेकिन जब अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई यह सुन करके कितना विचलित हो गया। तो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने कारण जब परिस्थिति आती है या अपने मित्र संबंधियों को कुछ होता है तो विचलित हो जाना स्वाभाविक। किसके तरफ है वो? वो पांडव है या कौरव है? किसके तरफ है? कौरव ही है। ज्ञानी थे, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले थे, लेकिन थे कौरव के साथ बंधे हुए। तो कहीं हम भी कौरवों के साथ बंध तो नहीं गए कि पांडव के तरफ है? तो पांडव माना कौन? जो किसी भी बात में विचलित नहीं होता है। नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा, जिसके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है। क्योंकि अगर कौरवों के तरफ रहे, भले भीष्म प्रतिज्ञा भी की हुई हो, लेकिन अगर कौरवों के तरफ रहे तो बाणों की शैया पर लेटना पड़ेगा। बाणों की शैया पर 18 दिन तक लेटना पड़ेगा। वो 18 दिन कितना होगा मालूम नहीं, संगम युग का एक एक घड़ी, एक एक सेकंड कितने के बराबर हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, यानी तकलीफों को भोगना पड़ा, स्थिति ऐसी हो गई। इसीलिए ये मत समझना कि हम तो पवित्रता को धारण किए हुए इतने सालों से हैं, हम तो स्वर्ग में आगे ही आने वाले हैं। ये गलतफहमी में मत रहना, वो गलतफहमी में मत रहना। क्योंकि अगर कौरवों के तरफ हो गए, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अनेक प्रलोभन भी आ रहे हैं, इसीलिए बाबा ने एक मुरली जो लास्ट की चलाई वो शायद यही देख करके कि ब्राह्मण भी किस किस के साधनों के प्रलोभन में जा रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा थैंक्स करो साधनों को भी, साइंस के साधनों को थैंक्स कर दो, शुक्रिया कर दो उनको, उनके प्रलोभन में नहीं जाओ। उन्होंने जो आपके सेवा में सुख दिया या आपकी स्थिति बनाने के लिए जो मददगार बने, वो साइंस के साधनों को थैंक्स। दुनिया में थैंक्स कब दिया जाता है? हाँ, आप किसी के घर जाओ, उसने आपकी बहुत खातरी किया, तो थैंक्स कब देंगे? जाते समय करेंगे ना थैंक्स कि आपने इतनी तो अब समय का इशारा भी बाबा दे रहा है कि अब वापस जाने का समय आ गया, तो थैंक्स करना शुरू करो सबको। साइंस के साधनों को थैंक्स करो, भाव यही है सबका थैंक्स गिविंग अब चालू हो गया कि प्रकृति को भी थैंक्स करो कि प्रकृति ने 84 जन्म हमें दिए तो सही, 84 शरीर दिए तो सही, तो प्रकृति को भी थैंक्स करो। हाँ, संबंधों को थैंक्स करो, जो आपके संबंधी बने, जिन संबंधों ने आपको सुख दिया, सहयोग दिया, उन संबंधों को भी थैंक्स करो। साइंस के साधनों को भी थैंक्स करो। तो हर एक को थैंक्स करना चालू करो, ताकि हमारा लंगर अब क्या हो जाए, लंगर उठे। अभी अगर लंगर अंदर गाढ़ा रहा तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंचेंगे, है ना। और इसीलिए आज की मुरली जब मैं सुन रही थी, बड़ा अच्छा लगा। बाबा ने कहा, अगर कोई परीक्षा में मूंझो, अगर कोई परीक्षा में मूंझना हुआ, अंदर में स्थिति ऊपर नीचे हुई, तो क्या करो, क्या प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा, ड्रामा का एप्लीकेशन करो। तो युद्ध का समय है, तो अब तक जो ज्ञान सुना, ये ज्ञान को अप्लाई करने का समय आ चुका है। ज्ञान सुनने के लिए थोड़ी था, ज्ञान माना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अब अप्लाई करना चालू करो, और फिर भी अगर कहीं मूंझ जाते हैं तो ड्रामा कह के आगे बढ़ो, अटक नहीं जाओ वहां पर, नहीं तो घायल हो जाएंगे, स्थिति एकदम डाउन होने लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा, एक तो थैंक्स कर दो, और थैंक्स करके अपना लंगर उठा लो वहां से, नष्ट मोहा बन जाओ, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो, तपस्या करो, और फिर भी अगर कोई मूंज आई तो ड्रामा के समझ लो कि ड्रामा अति कल्याणकारी है, इस ड्रामा में हमारा कल्याण कभी हो नहीं सकता। तो यही समय है, ये युद्ध के समय में ही ज्ञान को अप्लाई करना है, ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक स्वरूप में करने की आवश्यकता है। ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और अभी ये समय जो हमें मिला है, ये व्यवहारिक प्रयोग करने के लिए ही मिला हुआ है, ताकि समय पूरा, तीसरा विश्व युद्ध जब होना होगा, विनाश जब होने वाला होगा, सतयुग कब आने वाला, उन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, उन बातों में नहीं जाओ, उन बातों को जान करके भी क्या मिलेगा। अगर कोई कह दे के भाई फलाने साल में है विनाश, और आप उसी बात पर विश्वास कर लो, और कहीं आलस अलबेलेपन में आ जाओ, तो क्या होगा, युद्ध में घायल तो हो जाएंगे, हर परिस्थिति अटैक करेगी, हर समस्या अटैक करेगी। तो इसीलिए फाइनल विनाश होने से पहले ये युद्ध में विजयी मुझे बनना है, क्योंकि जो ये युद्ध में विजयी बनेगा वो फाइनल विनाश के समय भी विजयी होकर के पास विथ ऑनर हो जाएंगे। जो इस समय के युद्ध में अगर विजयी नहीं हुए तो फाइनल पेपर, विनाश का जो पेपर होगा, उसमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट कभी नहीं ले सकेंगे। इसलिए यही समय है जब हमें तीनों सर्टिफिकेट जो बाबा ने लेने के लिए कहा है, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट और भगवान मुझसे संतुष्ट, कब होगा, जब मैं हर पेपर में विजयी हो जाऊं तब। इसलिए युद्ध आरंभ हो चुका है, हर एक के जीवन में युद्ध आरंभ हो चुका है, ये मान करके चलो। और इसीलिए विजयी बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प या ये तीव्र पुरुषार्थ बाबा देखना चाहते हैं कि पेपर आए उसके पहले फाइनल करो कि ये पेपर को पार करने के लिए या विजयी होने के लिए किस शस्त्रों का प्रयोग करना है। जब प्रकृति से पेपर आता है तो वहां पर दो शस्त्र जरूरी होता है, कौन से, सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति। सहन भी करना होता है, सामना भी करना होता है, और पार करना होता है। ये दोनों पावर को व्यक्तियों के सामने यूज नहीं करना है, व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विजयी होने के बजाय हार हो जाएगी, अवस्था डगमग हो जाएगी। इसलिए कौन सी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, अपने संस्कारों के सामने विजयी होने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, साइलेंस पावर को, साइलेंस की शक्ति से अपने संस्कारों को काटना है। ये पुराने संस्कारों को भी काटने की जरूरत क्यों है, उसको खत्म करने की जरूरत क्यों है? बहुत सुंदर मैंने किसी जगह पढ़ा कि लोहे को तोड़ने वाला कौन होता है, लोहे को कौन तोड़ सकता है, उसका अपना जंक। लोहे को और कोई नहीं तोड़ सकता, उसका अपना जंक ही उसको तोड़ता है। ऐसे मनुष्य को तोड़ने वाला कौन, उसके कमजोरी के संस्कार ही उसको तोड़ते हैं, उसको विजयी होने से रोकते हैं। इसलिए हमें अपने पुराने संस्कारों को अभी समाप्त करना है, जिसको बाबा कहते भस्म कर दो, उसको समाप्त करो, ऐसा जो संस्कार का भी संस्कार कर दो, भस्म ही कर दो, ताकि वो पुनः जागृति न हो। क्योंकि ये कमजोरी के संस्कार को अगर अंदर पाल के रखे तो वो संस्कार ही हर युद्ध में हमारी हार का कारण बन जाएगा। इसीलिए संस्कार का ही संस्कार कर दो। लोहे को तोड़ने वाला उसका अपना जंक ही होता है, मनुष्य को हर युद्ध में हार खिलाने वाला उसका अपना कमजोरी का संस्कार ही होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन करो, और दैवी संस्कारों को जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने जागृत किया, ऐसे हमें भी अपने अंदर से वो ओरिजिनल संस्कार हमारे जो शुद्धि के हैं, संपूर्णता के हैं, उस संपूर्णता के संस्कार को जागृत करना है, तब हम ये पुराने संस्कारों का भी संस्कार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर अभी जिस तरह से साइंस भी विकसित होता जा रहा है, ये साइंस के भी अनेक प्रकार के प्रलोभन हमारे सामने पेपर बन करके ही आएंगे। इसीलिए बाबा का इनका थैंक्स कर दो, अभी ज्यादा उसी के अंदर नहीं जाना है, उसका भी थैंक्स करके उसको समाप्त करो, बुद्धि वहां से हटाओ। थैंक्स करना माना बुद्धि वहां से हटाओ अभी, क्योंकि नहीं तो यही बुद्धि का अटकाने वाला कारण बन जाएगा, जो हमारे पुरुषार्थ को रोक लगा देगा और हमें नीचे गिराने के लिए आधार बनेगा, या समय पर बाबा की याद से हमें वंचित कर देगा। इसीलिए बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है, कहानी मैंने थोड़े समय पहले ही पढ़ी थी, जो याद आती है कि एक बार एक राजा बहुत भक्ति कर रहा था, और भक्ति करके जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो, मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। तो राजा बड़ा दयालु था, कहा कि भगवान मेरी एक ही इच्छा है, वैसे तो सब कुछ आपने दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक इच्छा जरूर है मेरी। कहा कौन सी इच्छा? तो कहा जिस तरह आप मेरे सामने प्रसन्न हुए और मुझे ये सौभाग्य दिया, मैं सोचता हूँ मेरी सारी प्रजा और मेरे मित्र संबंधी को भी आप दर्शन दो, ताकि वो भी धन्य हो जाए। कहा कि ये तो असंभव है, भगवान ने कहा कि सबको मैं दर्शन दूं, ये तो असंभव हो जाएगा। कहा नहीं, मेरी ये इच्छा जरूर आप पूरी करो। भगवान ने भक्तों के आगे तो फिर भी दिखाया है कि भगवान अपने आप में झुक जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से ठीक एक हफ्ता बाद तुम सबको लेकर के उस पहाड़ी पर आना, और पहाड़ी पर जब ऊपर आएंगे मैं सबको दर्शन दे दूंगा, ठीक है? कहा ठीक है। राजा बड़ा खुश हो गया, नगाड़ा बजवा दिया सारे राज्य के अंदर के, भाई सभी चलो भगवान दर्शन देने वाले। सारे प्रजाजन इकट्ठे हो गए, सबको लेकर के राजा चलने लगे के रास्ते में सबसे पहले तांबे की पहाड़ी आई, इतने तांबे के सिक्के और सब देखा तो कुछ लोग वहां अटक गए कि नहीं भाई ये तांबा का सिक्का है उसको कैसे छोड़ दे। राजा ने कहा ये इसमें नहीं जाओ, ऊपर भगवान की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। कहा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति बाद में भी कभी हो जाएगी, है ना, बाद में भी हो जाएगी, इस समय तो ये ले लेवे, झोलियां भर लेवे अपनी, ठीक है। राजा भी क्या कर, बाकी सबको लेकर कहा चलो चलो चलो, बाकी सबको लेकर आगे चले तो चांदी की पहाड़ी आई जहाँ चांदी के सिक्के की सिक्के थे। तो चांदी को देख करके और प्रलोभन जागृत हुआ, विज्ञान आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है परमात्मा प्राप्ति से कैसे वंचित कर सकता है। लोगों ने कहा नहीं चांदी है इतना ले लो, जितना भर सको भर लो, भरना लगे। राजा बहुत विनती करने लगा, इसमें मत फंसो आप, भगवान की प्राप्ति कर लो पहले। कहा भगवान की प्राप्ति फिर कभी हो जाएंगी, अभी तो ये प्राप्ति जो हो रही है वो तो ले लेवे। और आगे बढ़े, बाकी सब जो थोड़े उनके साथ बचे थे उनको लेकर के और आगे बढ़े तो सोने की पहाड़ी आई, सोने के सिक्के आए, सोने की चमक को देख करके लोगों ने सोचा भर लो, सोने के सिक्के मिल रहे हैं, भर लो अपनी झोली भर लो, भरना शुरू कर। राजा कहे छोड़ो इन सबको, बाद में मिल जाएगा। कहा नहीं, बाद में भगवान की प्राप्ति हो जाएंगी, अभी तो ये भर लेते हैं। उसमें अटक गए, खाली राजा रानी रह गए और कुछ अनन्य रह गए। राजा ने कहा देखो प्रलोभन भी कैसी चीज है, भगवान की प्राप्ति करना नहीं चाहते हैं। रानी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन चलो हम लोग तो चलते हैं आगे बढ़े। तो हीरे की पहाड़ी आ गई, अब रानी का भी मन ललचा गया, हीरे को तो लेना ही चाहिए, है ना, हीरे में फंस गए। वो भी अपनी पल्लू लेकर के हीरे भरना चालू हो गए। राजा कहे छोड़ो उसको, कहा नहीं थोड़ा भर लेती हूँ फिर चलती हूँ। राजा अकेला ही ऊपर पहुंचा, भगवान ने कहा कहाँ है सब। हाँ, कहाँ है सब। तो देखो भगवान की प्राप्ति हो रही है और मनुष्य कहाँ अटके हुए हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि ब्राह्मणों को भी महसूस हुआ, चलने समय तो सारे चले लेकिन बीच में साइंस की प्रलोभन की पहाड़ियों में आए। तो आज मोबाइल है, कल दूसरा है, कल तीसरा है, कल चौथा है, एक एक चीज आती गई और ऊपर पहुंचने वाले कितने रहे, 108। 9 लाख में से ऊपर कितने पहुंचे, 108, और संपूर्ण कितने पहुंचे, सिर्फ 8। तो अपना नंबर देख लो कहाँ है, कहाँ है सभी। हाँ, तो इसीलिए ये माया के तिलसम के जैसे ये चीजें हैं। इसलिए भगवान कहते अब तक उसने जो सुख दिया थैंक्स कर लो उसका, बुद्धि को अटकाओ नहीं, अब आगे बढ़ो, पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। और जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, भगवान की प्राप्ति एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। बाकी सभी प्रलोभन तो हमें इससे भी एडवांस रूप में सत्युग में मिलने वाले ही है। साइंस अपने रिफाइंड स्वरूप में, सोना अपने रिफाइंड स्वरूप में सत्युग में मिलने वाला ही है, लेकिन भगवान की प्राप्ति सारे कल्प में सिर्फ एक बार होती है। इसलिए जो भगवान की चाहना है वो चाहना को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हुए धन्य धन्य अपने आप को बना ले, क्योंकि बाद में 5000 साल तक ये होने वाला नहीं है। सोना चांदी तांबा सब कुछ मिलेगा सारे कल्प में हमें, है ना, लेकिन ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, उससे आगे सोना चांदी हीरा मोती क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए अब अपनी बुद्धि को क्या करो, इन सभी बातों से ऊपर उठा लो। जितना अपनी बुद्धि इन बातों में फंसी होगी तो हर युद्ध के अंदर हमारी हार निश्चित है। इसलिए कहा कमजोरी जहाँ होगी وہ کمزوری ہی ہمیں توڑنے کے لیے نمت بنیں گے. لوہے کو توڑنے والا اس کا جنک ہوتا ہے, منشیہ کو توڑنے والے اس کی اپنی کمزوری کے سنسکار ہوتے ہیں. اس لیے اپنی کمزوری کے سنسکار کے اوپر وجئی بننے کے لیے اس کو بھسم کرنا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایک دم سمپورنتا کی منزل پر پہنچنے سے تھوڑے ہی پہلے کیا ہو جائے, پہاڑی کے نیچے گرتے ہوئے آ جائے. اسی لیے اب اپنے بدھی کو یہاں وہاں بھٹکانا نہیں ہے. سب کو تھینکس کرو, سب نے سہیوگ دیا, سب نے سکھ دیا, سب نے جو دیا تھینکس کرو اور آگے بڑھو. شبھ بھاونا شبھ کامنا رکھتے ہوئے سب کے پرتی اپنی استھتی کو شریشٹھ بنانے کا پریتن مجھے کرنا ہے, اور اسی میں ہی میرے مجھے اپنے آپ میں پرماتما کے سمیپ ساتھ کا انوبھو کرتے ہوئے ہر یدھ کے اندر وجئی بننا ہے. اسی لیے پانڈو مانا کون, پانڈو مانا کون جس نے بھگوان کو سارتھی بنا لیا, بھگوان کے ساتھ ہر قدم مل کر کے چلتے رہے وہ سچے پانڈو ہوں گے. باقی کورو بھی نارائنی سینا ہی تھی لیکن کورو کے ساتھ تھی. اسی طرح دنیا کے سمبندوں نے جو اب تک سکھ دیا بہت اچھی بات ہے, اس کو یہ کرے اندر سے شکریہ کر دے کہ آپ نے ہمیں بہت سہیوگ دیا, نہیں دیا تو بھی ان کے پرتی شکریہ, یا کسی نے اگر سکھ دیا تو بہت اچھی بات, آپ تھینکس کرو. لیکن اگر کسی نے دکھ دیا, وگن ڈالے, کوئی نے آپ کے لیے رکاوٹ, اس کو بھی تھینکس دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دکھ دیا تبھی آپ کا من بھگوان کے طرف لگا نا. اگر وہ دکھ نہیں دیتے تھے تو بھگوان کے طرف جاتے تھے کیا؟ دکھ نہیں دیتے تھے تو بھگوان کے طرف کبھی نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے دکھ دیا وہی آپ کو بھگوان تک پہنچایا, تو اسی لیے ان کا بھی تھینکس, سکھ دینے والے کا بھی تھینکس تو دکھ دینے والے کا بھی تھینکس. سب کا تھینکس کرو, اور سب کا تھینکس کر کے اب اپنی بدھی کو اپرام اٹھا لو, ایشور کے سانیدھیہ میں اپنے آپ کو جتنا نرنتر رکھ سکے وہ بہت اچھا ہے. کیونکہ اب یدھ چالو ہو گیا تو وجئی اس کی ہے جو سارتھی بنا دیں گا بھگوان کو. جس نے سارتھی نہیں بنایا, ہر قدم بابا کے ساتھ مل کر کے, ہر قدم میں پہلے بابا کو یاد کرو, ہر کرم کرتے پہلے بابا کو یاد, بابا کو ساتھ لے کر کے سارتھی بنا کر کے آپ کرم کرتے چلو, تو کیسی بھی پرستھتی ہوں گی, کیسی بھی یدھ کی استھتی ہوں گی, کیسے بھی وگنا آئیں گے, اس میں بھی نروگنا بنانے والا بابا ہوگا. کرن کراونہار بابا ہے, یہ یاد رکھو. اسی لیے بابا کو ساتھ لے کر کے ہر قدم چلتے چلیں گے تو کیا سرکشت, کیونکہ اب کی جو چڑھائی ہے, اب کی جو چڑھائی ہے وہ کیسی ہے؟ جیسے لوگ بدری کیدار ناتھ جاتے ہیں تو چڑھائی کیسی ہوتی ہے, ہاں ایسی سیدھی ایک دم, اور پٹری کیسی ہوں گی, ذرا بھی پیر ادھر ادھر ہوا تو گئے نیچے گئے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب تک جو چڑھائی چڑھتے رہے وہ تو ایسی تھی, لیکن اب چڑھائی ہے وہ ایسی ہے جو منزل کو پہنچیں گے تو کتنے پہنچنے والے ہیں, واہ. ہاں یہ ہاتھ بابا بھی دیکھ رہا ہوگا اور کتنا خوش ہو رہا ہوگا, تبھی تو بابا نے کہا 108 سے زیادہ ہوئے تو لڑیا لگا دوں گا, ہے نا. لیکن اب یہ ہاتھ ہمیشہ یاد رہے کہ ہم نے یہ ہاتھ کھڑا کیا تھا, ہاں, کہ ہم اوپر پہنچنے والے ہیں. پھر کل کو بہانہ نہیں دینا کہ ہم تو پہنچنا چاہتے تھے لیکن یہ پرابلم آ گیا, یہ پرستھتی آ گئی, ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے ہم تو نیچے گر پڑے, پھسل گئے ایک دم. یہ بہانہ نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. اسی لیے اب ہر پیپر کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپئر کر دو, ہر پیپر کے لیے ہم تیار ہیں, کیونکہ بابا ہمارے ساتھ ہے, ہم ہی وہ پانڈو ہے. मुझे कौरवों को नहीं देखना है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये बाबा का बच्चा इतने सालों से बना तो भी उसके जीवन में धारणा नहीं है, वो कौरव है, समझ लो ना। आप तो पांडव बन जाओ, आप उसकी शिकायत करके आप कौरवों के तरफ क्यों जा रहे हैं? कौरवों में क्या हो गए, अलबेले हो गए थे ना। तो जो अलबेलापन के डनलप के तक्के लेकर के चलने का प्रयास करेंगे वो कौरव ही हो जाएंगे, उसकी कभी विजयी हो नहीं सकती है। इसीलिए पांडव बन जाओ, इधर उधर देखना नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उन व्यर्थ की बातों में मुझे जाना नहीं है। अगर वो कुछ अलबेलेपन में आकर कर रहा है तो अच्छा है, उसने रास्ता क्लियर कर दिया कि आप आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो ना। उसने रास्ता क्लियर कर दिया आपके लिए, हाँ, भले वो इतने सालों से ज्ञान में था, लेकिन अगर वो अलबेलेपन में आकर के पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, ये तो इतने सालों से ये पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है, हाँ, तो कम से कम उसका भी थैंक्स मानो कि वो अलबेलेपन में आकर आपको कहते हैं रास्ता क्लियर है, आप आगे जाओ, जाओ आगे। तो आपको रास्ता दे रहा है तो उसका भी करो थैंक्स, उसको भी करो थैंक्स कि हमको रास्ता क्लियर करके दे दिया आपने। बाकी वो अलबेलेपन में इसलिए मैं भी अलबेला हो जाऊं, हाँ, क्या होगा उससे, हाँ, अलबेलेपन के साथी नहीं बनो, अलबेलेपन में जो ब्राह्मण है उनके साथी नहीं बनना है। हमें किसके साथी बनना है? बाबा के साथी। बाबा करण करावन हार है, अपनी बुद्धि को ऐसा समर्पित कर दो बाबा के आगे, बाबा के आगे कि बाबा यूज करे आपको समय अनुसार साक्षात्कार कराने के लिए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के लिए आपको यूज करे बाबा। तो अपने आप को इतना तैयार कर लो कि बाबा अब मैं समर्पित हूँ, आप इस तन का जिस तरह से भी प्रयोग करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी मुझे यूज करना चाहते हैं, उस तरीके से आप यूज करो। तो इसीलिए अब प्रैक्टिकल गीता ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने का समय आ गया है, और इसीलिए उसमें आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा ने हमेशा ये महावाक्य कहा है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, वो फर्स्ट में भी जा सकते हैं। इसलिए आप भले बाबा के पास पहली बार आए होंगे लास्ट में, लेकिन लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने की गारंटी भगवान की है, लेकिन तब जब आप अपना हाथ और साथ सिर्फ बाबा के साथ रखो। तो अगर इधर उधर साथ ढूंढने का प्रयास किया, इसका साथ ले लूं ना, इसका साथ ले लूं ना, इसके साथ चलूं, तो क्या होगा? तो भगवान गारंटी नहीं लेगा। और दादी जानकी हमेशा कहती है कि बाबा के दो पोज है, आप ऊपर जाएंगे ना तो हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाबा का एक हाथ आगे का पोज है और एक हाथ पीछे का पोज है, दो चित्र है ऐसे बाबा के हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा का जो आगे का पोज है वो कहता है जो बच्चे तकलीफ में है, मदद चाहते हैं, तो बाबा तुरंत अपना हाथ आगे कर लेता है, आओ बच्चे चलो मेरा हाथ पकड़ लो और चलो आगे। लेकिन जो इधर उधर साथ देखने का प्रयास करते, इसका साथ ले लूं, इसका साथ ले लूं, इसका साथ ले लूं, इधर इधर साथ लेने का प्रयास करते हैं, बाबा को भूल जाते तो बाबा भी हाथ पीछे कर लेते हैं और फिर उन्होंने भी साथ नहीं दिया और लास्ट में कहा ओ बाबा, तो बाबा भी क्या कहते, अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। भगवान भी जब समय था तब कर सकते थे, समय पूरा होने के बाद बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, तो हाथ पीछे कर लेंगे। तो हमें कौन सा हाथ चाहिए? आगे वाला। तो इसीलिए कुछ भी हो, व्यक्तियों का सहारा, वस्तुओं का सहारा, इन सब सहारों से अपने आप को ऊपर उठाओ। आप सोचेंगे लेकिन हमने तो ब्राह्मण आत्माओं का ही सहारा लेने का प्रयास किया, हाँ, फलाने बहनों का, भाइयों का ही सहारा लेने का प्रयास किया, अरे बाबा सहारा देने के लिए बैठा है तो बाबा का सहारा लो ना। हाँ, बाबा ही सबसे बड़ा है, बाबा ही सर्वसमर्थ है। कोई भी भाई या बहन सर्वसमर्थ नहीं है, इसलिए बाबा का सहारा लो और बाबा के सहारे पर चलते चलेंगे तो सदा विजयी आत्मा। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, ऊपर मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब से क्या करो, युद्ध में विजयी होने के लिए अर्जुन ने क्या किया, भगवान को अपना सारथी बना लिया। तो आप सभी कौन हो, अर्जुन हो या दुर्योधन हो? दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने भगवान से यही कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन अधर्म को छोड़ नहीं सकता हूँ, धर्म पर चल नहीं सकता हूँ। तो कई बाबा के बच्चे हैं, श्रीमत क्या है जानते हैं, मनमत क्या है, परमत क्या है जानते हैं, लेकिन फिर भी जो श्रीमत पर नहीं चल सकते, मनमत परमत का सहारा लेते हैं, वो कौन हो गए? पांडव हो गए, कौरव हो गए। हाँ, कौरव हो गए ना, तो मुझे क्या बनना है? पांडव बनना है। तो श्रीमत का हाथ पकड़ के चलो, मन मत पर मत का हाथ पकड़ के नहीं चलो, वही आपको कौरव बना देगा। और वो नारायणी सेना कौरव के तरफ जो हो गई, उसकी हार भी निश्चित और बाणों की शैया पर भी क्या लेटना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे बाणों की शैया पर मुझे लेटना नहीं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
हम